SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS रेडियो के हिंदी कार्यक्रम में मैं हूँ अनीता परार। साहित्य किसी भी समाज या देश का दर्पण होता है। ये हमारी संवेदनाओं का ऐसा एहसास है जिसके अस्तित्व को हम सब महसूस करते हैं। साहित्य ने सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में सदियां लगाई हैं। उत्कृष्ट साहित्य हमेशा ही जनोन्मुख होता है। हिंदी साहित्य में एक ऐसा ही अद्वितीय नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद का जीवन काल सिर्फ 48 वर्ष का था, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण का गहरा अध्ययन किया। प्रसाद की भाषा अलंकारित है, उनकी कहानियों में भी जैसे कविता की लय मिलती है। प्रसाद की रचनाओं में आदर्शवाद और भावुकता का अनोखा मिश्रण है। एक ओर उनकी रचनाएं हमारे सुनहरे इतिहास का परिचय देती हैं, तो दूसरी ओर उनकी कविता में सौंदर्य गोधूली में मुख पर घूंघट डाले और आंचल में दीप जलाए आता है, या कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलता है। प्रसाद का सौंदर्य चित्रण हृदय को स्पर्श ही नहीं करता, बल्कि उसे मुक्त कर देता है। उनकी रचनाओं में जैसे शहद से मिठास है। प्रसाद के बारे में भारत की जानी मानी लेखिका क्षमा शर्मा, जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और बहुत से टीवी और रेडियो चैनल्स के पैनल पर हैं, उनके साथ बात की कि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें साहित्य के हर क्षेत्र में अनुपम सफलता प्राप्त हुई, तो वो कहती हैं।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वो नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं, वो मतलब इतने बड़े साहित्यकार हैं कि एक बार विष्णुकरे जो एक कवि हैं, उन्होंने कहा था कि अगर यूरोप के पास महाभारत होता तो वो पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ देता। तो मुझे लगता है यूरोप के पास या अमेरिका के पास, पूरे पश्चिम के पास अगर जयशंकर प्रसाद जी होते तो वो बहुत ही, उनको एक तरीके से हमने उन्हें बहुत इग्नोर किया है, हमने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर वो वहाँ होते तो शायद शेक्सपियर से भी बड़े साहित्यकार के रूप में दर्ज होते।
उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही चित्रमय और काव्यमय सी है, तो उनके कथानक पर या उनकी भाषा के ऊपर कुछ बात करेंगे?
देखिए, भाषा वही अच्छी हो सकती है जो कि लोगों तक पहुंच जाए। और प्रसाद जी की भाषा के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि वो कठिन है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचती है। चाहे वो तितली हो, कंकाल हो, अजातशत्रु हो, ध्रुव स्वामिनी हो, स्कंदगुप्त हो, कामायनी हो, आंसू हो, लहरें हो, मतलब कोई वो पहुंचती है। और जब मैं आठवीं कक्षा में पढ़ती थी तभी मैंने उनका लगभग संपूर्ण साहित्य पढ़ लिया था, और वो मुझे तब से वो मेरे मन में एक अपनी जगह बनाए हुए हैं। और मुझे वो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और उनके साहित्य के अधिक अर्थ खुलते गए, तो मुझे लगा कि ध्रुव स्वामिनी जो है उससे आज फेमिनिज्म का जमाना है, आज स्त्री अधिकारों का जमाना है, स्त्री चॉइसेस की बात की जाती है कि जो स्त्री की इच्छा हो वो करे। तो प्रसाद ने तो ध्रुव स्वामिनी में विवाहित होते हुए भी, रामगुप्त से उनका विवाह हुआ है, लेकिन वो चंद्रगुप्त के साथ जाना चाहती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, तो उनसे विवाह करा दिया। उस समय जिस समय वो उसे लिख रहे थे, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि प्रेमचंद के लिए भी ऐसी एक एक जिसको कहना चाहिए एक इंडिपेंडेंट, एक आत्मनिर्भर निर्भर स्त्री का सृजन करना मुश्किल काम है जो प्रसाद जी ने किया। और उनके सभी स्त्री पात्र वो एक करुणा लेकर आते हैं स्त्रियों के लिए। आज का फेमिनिज्म कहेगा कि हमें करुणा की जरूरत नहीं, हम इक्वालिटी चाहते हैं, लेकिन इक्वालिटी से पहले का शब्द करुणा ही है। आप किसी की स्थिति को देख के द्रवित होते हैं, उसे सहानुभूति देते हैं और सभी इक्वालिटी आती है। तो प्रसाद के पूरे साहित्य में स्त्रियों के प्रति, गरीबों के प्रति, जो भी वंचित तबका है उसके प्रति एक अभूतपूर्व करुणा है। और एक बात ये है कि वो चूंकि उन्होंने राजमहलों का, राजप्रसादों का, राजाओं का वर्णन किया है, तो उनको कह दिया गया कि वो तो फ्यूडल है, वो तो पुराने जमाने के हैं, उनका प्रगतिशीलता से कोई संबंध नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, वो उन चीजों का वर्णन जरूर करते हैं लेकिन उनकी आलोचना तक दृष्टि साथ साथ काम करती है
जी। तो
इस नजर से वो बहुत बड़े लेखक हैं।
अच्छा, प्रसाद जी की जो कहें कि कहानियों में जो रचना शिल्प है, जैसे कि उनकी कहानियाँ या तो एकदम से संवादों से शुरू होती थी या कोई प्रकृति की सौंदर्य दिखाते हुए या किसी पात्र के विशेष चित्रण के साथ में, तो ये शायद प्रसाद ही थे जो इस तरह से अपना प्रभाव डालते थे अपने काम में।
जी हाँ, और वो एक तरीके से इस तरह से, यदि आप प्रकृति का वर्णन करें या किसी नायक या नायिका या किसी एक पात्र को पहले से लाएं, तो पाठक के साथ एक सीधा रिश्ता बन जाता है
जी।
तो प्रसाद इस कला में एक तरीके से माहिर हैं। और वो जो मैं अभी बात कर रही थी कि वो कैसे लोगों में, सिर्फ साहित्यकारों में ही नहीं, लोगों में जो साधारण तबका था उसमें किस तरह से लोकप्रिय थे। माधवी वर्मा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब वो प्रसाद जी से मिलने गई और बनारस के रेलवे स्टेशन पर उतरी, तो वहां उन्होंने तांगे वाले से कहा कि भाई उन्हें जयशंकर प्रसाद के यहाँ जाना है। और जयशंकर, तांगे वाले ने पूछा कि जयशंकर प्रसाद कौन, तो कहा कि वो एक लेखक है। तो तांगे वाले ने कहा कि भाई मैं जयशंकर प्रसाद को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सुंभनी साहू है, उनको जानता हूँ, वो बहुत बड़े लेखक हैं। और वो तांगे वाला उनको ले गया महादेवी जी को, और सुंभनी साहू जयशंकर प्रसाद ही थे। और उसके बाद वो महादेवी ने लिखा है कि जब प्रसाद जी से वो मिली और फिर वो उन्हें छोड़ने आए, तो जब तक महादेवी जी का तांगा आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक वो वहां खड़े रहे।
अच्छा।
और उन्होंने लिखा कि मेरी उनसे अंतिम ही मुलाकात थी, उसके बाद उनका निधन हो गया। बहुत ही द्रवित करने वाला पीस है महादेवी जी का प्रसाद जी के बारे में। और ये मानिए कि एक पूरी पीढ़ी रही है हिंदुस्तान में जिसे जयशंकर प्रसाद ने बहुत प्रभावित किया। हाँ, कुछ प्रगतिशीलता के हल्ले में और प्रेमचंद बरक जयशंकर प्रसाद के होते हुए प्रसाद जी को कुछ पीछे धकेलने की कोशिश की गई और उनके साथ अन्याय हुआ, ऐसा मैं मानती हूँ। अनोखी वो मातृतुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इतना मतलब अद्भुत उनका है और पूरा लयात्मक, तो उनको बुलाया नहीं जा सकता। मैं तो सोचती हूँ वो इतने बड़े हैं, इतने अच्छे लेखक हैं, इतना प्रभावशाली हैं, उन्हें भूल नहीं सकते हैं
जी। प्रसाद जी की कहानियों में भारतीय संस्कृति, अतीत का प्रेम, और सबसे बड़ी बात यह लगती है कि प्रसाद के पुरुष पात्रों की अपेक्षा नारी पात्र अधिक प्रभावी हैं, सशक्त हैं और सक्षम हैं, जो अतीत का गौरव भी हैं और आदर्शों के प्रतीक भी हैं।
बिल्कुल सही बात है। और आज इस दौर में जब हम स्त्रियों के अधिकारों, उनकी सजगता, उनकी चेतना आदि की इतनी बात सुनते हैं, तो अगर प्रसाद के पूरे साहित्य को पढ़ें तो उसमें स्त्रियों के जितने अधिकार बात की गई है, जितने उनको करुणा दी गई है, जितना उनके जो स्थिति है समाज में उसको लेकर लेखक जो है द्रवित होते हैं, परेशान हैं और चाहते हैं कि वो उनकी स्थिति सुधरे। और इस संदर्भ में उनकी चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी
जी।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यहाँ भी जीवन का सुंदर समतल है, और पीयूष यानी अमृत की तरह हो, मतलब प्रसाद तो प्रसाद है अनिता जी, कोई कह सकता है कि मैं उन पर एकदम मोहित हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे वो इतने बड़े लेखक हैं कि उन पर कोई, मैं समझती हूँ बहुत बड़े बड़े ग्रंथ में अगर लिख दिए जाए तो भी शायद हम उनका सच्चा आकलन न कर पाए।
शमा जी ने कामायनी की कुछ पंक्तियाँ सुनाई। कामायनी जयशंकर प्रसाद का ऐसा काव्य है जो हमेशा ही मानव जीवन के पास प्रेरणा बनकर रहेगा, क्योंकि
इसमें प्रतीकों के माध्यम से जीवन का जो विश्लेषण प्रसाद ने किया वो आज के परिवेश में उतना ही यथार्थ है जितना उनके जीवन काल में रहा होगा। प्रसाद की श्रद्धा की छाया में जीवन के कोलाहल का थका हुआ मनु नई प्रेरणा प्राप्त करता है। एक ओर श्रद्धा का गीत बौद्धिक जीवन से उत्पन्न दुख को बताता है तो दूसरी ओर जीवन में आशा, उल्लास और आस्था जगाता है। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.